ओम शांति। सभी बहुत अच्छा साइलेंस कैफे करके आ रहे हैं, तो सभी एक बार प्रेम से एक साथ एक सुर में कहेंगे ओम शांति। आज शाम के दूसरे सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आप सभी दो दिन से साइलेंस के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं। आप सभी को अनुभव भी हो रहा होगा, अनुभव हो रहा है जिस जिसको वो हाथ खड़ा करे। बहुत सुंदर, सभी को साइलेंस की अनुभूति हो रही है। आज उस अनुभव को और गहरा बनाने के लिए, उस पर कुछ चर्चा करने के लिए आज हमने ये पैनल डिस्कशन, जिसको एक्सपर्ट टॉक का नाम दिया है, वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है साइलेंस एंड नेटवर्किंग, मैसेज ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन थ्रू द पावर ऑफ माइंड। कैसे हमारा माइंड कम्युनिकेट करता है, एंड स्प्रेडिंग गुड फीलिंग्स एंड विशेस। आज के इस टॉपिक पर हमारे बीच में प्रकाश डालने के लिए हमारे विशेष अतिथि श्री जयमिन देसाई जी हैं, जो कि इसरो में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आपके बारे में संक्षेप में हम परिचय देना चाहेंगे। आप 1986 बैच के मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात से आपने पढ़ाई पूरी की और उसके पश्चात 1987 में आपने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो, इसरो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता वो हाथ खड़ा करे, कोई भी ऐसा नहीं जो इसरो को आज नहीं जानता, तो आप उसमें कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं इतने वर्षों से देश प्रति देते हुए आज आप वर्तमान समय डेप्यूटी डायरेक्टर पद पर वहां पर कार्यरत हैं। हम जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। आपको, हमको अति हर्ष है ये जान के कि भाई साहब आज हमारे बीच में हैं। आपने 15 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में अपना सहयोग दिया है, जिसमें चंद्रयान 1, 2, 3, चंद्रयान के बारे में सभी जानते हैं, उस एक प्रोजेक्ट के कारण हमारे देश का नाम विश्व भर में कितना रोशन हुआ है, और भाई साहब उस प्रोजेक्ट के हिस्सा रहे हैं। साथ में मार्स ऑर्बिटर मिशंस, कई सारे आप चेयरमैन रहे हैं, कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज के, जिनमें से एक माउंट आबू में भी है। आपने कई सारे इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किए हैं और साथ में आप स्किल डेवलपमेंट एरिया में भी कई सेशंस, ट्रेनिंग्स आदि कराते रहते हैं। तो जोरदार ताली से हम भाई साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे अति आदरणीय चंद्रिका दीदी जी हैं, जिनसे आप सभी कल मिल चुके हैं। सभी ने क्लास किया चंद्रिका दीदी का जी, तो सभी का परिचय है, फिर भी मैं एक बार पुनः चंद्रिका दीदी को के बारे में बताना चाहूंगी। आप परिचय है, किसको परिचय नहीं है, सबको परिचय है। तो चंद्रिका दीदी जी का हम बहुत प्रेम से जोरदार तालियों से यहाँ स्वागत करेंगे। हमें ये बोनस सेशन मिला है चंद्रिका दीदी का, जो आज हमारे बीच में है। साथ में हम सभी श्याम प्रसाद भाई सब से भी कल मिल चुके हैं। हाँ, सभी ने अटेंड किया था सेशन, हाँ, जो कल नो टोबैको डे का सेशन था, उसमें भाई साहब ने अपने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए थे। भाई साहब राजस्थान के जहोटा विलेज के सरपंच हैं और आपने अपनी अथक सेवाओं द्वारा उस विलेज में और आसपास के विलेजेस को क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज, विमेन फ्रेंडली विलेज आदि आदि कई सारी उपाधियां, कई सारे परिवर्तन आपने उस ग्रामीण क्षेत्र में किए। और वर्तमान समय जो ब्रह्मा कुमारी इसका राज ऋषि गोकुल ग्राम प्रोजेक्ट है, जो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है, उसमें भी भाई साहब अपना सहयोग दे रहे हैं, पूरे पूरे आप सहयोगी हैं। तो भाई साहब का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। हम सभी यहाँ दो दिन से साइलेंस के ऊपर सुन रहे हैं और आज हमारे बीच में मेहमान साइंस की फील्ड से भी हैं। अक्सर करके देखा जाता है कि इन दोनों को जो दुनिया वाले समझते हैं कि शायद साइंस और साइलेंस विपरीत है, मगर सेशन शुरू करने से पहले हम अपने माननीय अतिथियों का तिलक और बैच द्वारा स्वागत करेंगे। हमारी बहनें तिलक और बैच द्वारा मैं अनुरोध करूंगी कि वे अतिथियों का स्वागत करें और आप तालियां बजाकर इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। तो जब हम साइलेंस की बात करते हैं तो हम सुन रहे हैं आज तक सेशंस में कि साइलेंस एक पावर है, साइलेंस कमजोरी नहीं एक शक्ति है, एक पावर है। तो जब भी हम साइंस के रूप से अगर पावर की बात करें तो पावर कहीं जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, रिसीव होती है और फिर वो काम में आती है। यदि कोई पावर किसी के काम ना आए तो वो पावर किसी काम की है नहीं है। तो इसी तरह साइलेंस को भी हम कहते हैं कि ये एक पावर है। तो पावर का जनरेशन होगा हमारे अंतर मन में, कहीं ना कहीं जरूर इसका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन भी होना चाहिए। तो मैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा प्रकाश डालें कि जब हमें साइलेंस पावर को जनरेट करना है तो वो मन कैसा होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए जो उस शक्ति को जनरेट कर सके। जैसे जब कोई भी मशीन में पावर जनरेट होती है तो यदि वो मशीन अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा हिलती है, हलचल में है, तो वो सही से ना तो पावर जनरेट कर सकती है और साथ साथ में उस मशीन की में खराबी आ सकती है। तो इसी तरह कैसा मन हो जो ये मन साइलेंस की शक्ति को जनरेट कर सके और कैसे हम उसको प्राप्त करें। कोई कहता है मन को क्लीन करो, कोई कहता है कि मन को एकाग्र करो, पर कैसे करें, कैसा मन हो और कैसे करें। दीदी जी
ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं मानव का अस्तित्व शरीर बत्ता आत्मा दोनों के होने से ही मनुष्य का अस्तित्व है। अगर जब आत्मा अपने संकल्प शक्ति के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा, संकल्प के द्वारा शांति की शक्ति से वो जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। इस समय मनुष्यों का मन बहिर्मुख है, भटका हुआ है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ या मेरी शक्ति क्या है। तो वो अपने को शरीर समझने के कारण शरीर, शरीर के संबंध, शरीर के कारोबारों में अपनी बुद्धि को बहुत ही फैलाए हुए हैं, एकाग्रता नहीं है। और एकाग्रता न होने के कारण जो शांति की शक्ति अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। शांति की शक्ति की अनुभूति के लिए मन को एक संकल्प करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, और जब उस शांति में रह करके बुद्धि से कोई भी बात का निर्णय लेते हैं तो वो कार्य सफलता में परिणमित होता है। इसलिए आत्मा की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है संकल्प शक्ति। कहा जाता है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, या जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है वो है शांति की शक्ति। और उसके लिए केवल अपने आत्मस्वरूप को समझते हुए मन को उसी में एकाग्र करने से वो शक्ति को स्वयं महसूस करते हैं। जैसे कि हम प्रेयर करने बैठते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं। हम प्रेयर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं कि भगवान उसका भला करे, कल्याण करे, तो हमारा वो संकल्प जब हम शांत में बैठ के करते तो उस तक पहुंचता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में टेलीपैथी कहते हैं। तो ये शांति की शक्ति ने संदेश पहुंचाया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, साइंस ने उसको सपोर्ट किया। आज ये जो साइंस का साधन मोबाइल बना हुआ है, तो हम यहां बैठे हैं और हमारा मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा है। कैसे जा रहा है? साइंस के माध्यम से हम आवाज के द्वारा शक्ति को पहुंचाते हैं। तो मन के संकल्प की शक्ति वाणी के द्वारा हम मोबाइल के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आत्मा की शक्ति है शांति, और शांति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। उस शांति के अंदर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इतना ज्यादा हम उसको पावर के रूप में महसूस करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने बहुत स्पष्टता से बताया कि जो हमारे संकल्प हैं, जब वो एक में स्थित होंगे, एक संकल्प में एकाग्र होंगे, तब वो एक शक्ति का रूप धारण करेंगे। आपने अपने व्यक्तित्व में दीदी ये भी बताया कि जैसे साइंस के साधन हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल है, तो मैं हमारे आदरणीय जैमिन भाई जी से पूछना चाहूंगी कि आप सैटेलाइट्स के विषय में जानकारी रखते हैं, वो कैसे काम करते हैं? जो वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं वो दिखाई तो नहीं देते, सैटेलाइट से सिग्नल आपके पास आ रहा है, हम में से किसी को भी वो सिग्नल दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फिर भी वो काम करता है। इसी प्रकार अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो कहा जाता है कि 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जिसमें 55% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज द्वारा होती है, 38% टोन द्वारा होती है, और सिर्फ 7% कम्युनिकेशन शब्दों द्वारा होती है। तो यहां पर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वेटेज दिया जाता है। जब हम संकल्पों की बात करते हैं भाई साहब, तो क्या संकल्प थॉट्स ट्रैवल करते हैं? टेलीपैथी, जिसको हम जानते तो हैं, नाम भी सबने सुना है, लेकिन यदि आप में से किसी को बोला जाए कि यहां बैठे हुए किसी और को संदेश दीजिए, या आपको कोई संदेश पहुंचाना है कहीं, तो आप पहले सोचेंगे या पहले फोन उठाएंगे? हम सभी सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे कि कॉल करते हैं और मैसेज देते हैं। तो माइंड थॉट्स क्या ट्रैवल करते हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है? साइंस क्या कहते हैं भाई साहब?
सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज चंद्रिका दीदी जी, आई थिंक कृति जी के साथ भी मैं संसर्ग में था, तो शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। अभी स्ट्रेट वे अगर इफ वी कम टू द पॉइंट कि मैंने थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल भी पढ़ा है एक्चुअली, एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग विद द एस्ट्रोनॉमी, स्पेस टेलीस्कोप्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, इवन वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो जैसे दीदी ने सही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो वेव्स है उसकी अलग अलग तरंग लंबाई होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो लाइक योर, इफ यू टेक योर मोबाइल, सो देर आर डिफरेंट बैंड्स एंड यस, वो है एक। और दूसरी, अगर ऑन स्पिरिचुअल ग्राउंड पे, स्पिरिचुअल बेसिस पे जो भी मैंने कुछ थोड़ा पढ़ा है, काफ़ी बुक्स, ब्रह्मा कुमारीज हो या दूसरे भी काफ़ी बुक्स पढ़ी थी सिंस माय इवन चाइल्डहुड, तो उसमें मुझे ये पाया गया है कि हाँ, ये ऐसा है कि हम कई बार जो अच्छे लोगों के संसर्ग में अगर रहते हैं तो हमको एक अच्छा गुड फीलिंग आती है। फील गुड फैक्टर्स एक रहता है, और जब कोई मतलब अनइजीनेस या मतलब कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले लोगों के साथ अगर हम आते हैं उनके पास, तो हमको जिसको हम अपनी सैटेलाइट लैंग्वेज में या इलेक्ट्रॉनिक्स या अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम नॉइज बोलते हैं, नॉइज एंड डिस्टर्बेंसेस, तो डेफिनेटली ये एक है. एंड स्पिरिचुअल एंड साइंस, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है बेसिकली. इफ यू जैसे इट इज बेसिकली योर माइंडसेट विच क्रिएट्स ऑल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग बेसिकली. एंड अभी अगर आपने देखा होगा कि यहाँ से जो हमको अगर अपनी गैलेक्सी जो है उसके भी बाहर जाना है, इवन जुपिटर जो जाना है, तो आपको पता होगा कि 70s या 80s में जो अमेरिका ने छोड़ा था मिशंस, तो अभी 20, 25 और 30 साल के बाद वो उसके नज़दीक जा रहा है. और जैसे हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था, तो इट टूक नियरली 8 to 9 months टू रीच ओवर मार्स. सो पॉइंट इज यस means how to basically correlate your spiritual, our spiritual and science. So that is very important. And I can tell you कि अगर आप थोड़े कुछ आपके पास नॉलेज है, साइंस है, इंजीनियरिंग, एंड इफ यू आर रियली ट्राई टू कोरिलेट विथ स्पिरिचुअलिटी एंड पर्टिकुलरली लाइक मैजिक ऑफ साइलेंस, नो आवर this thing, you can navigate any kind of even success or failures in your life. See, I will tell you one thing. अगर आपको कोई सफलता भी मिलती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक दूसरी ऑर्बिट में चले जाते हैं, कि भाई आपके ऊपर से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं कि भाई अभी और ज़्यादा, तो आप उसमें भी फिर दबना शुरू हो जाता है, और फेल्योर में एक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का भी माहौल रहता है. बट दोनों वो मैंने एक्सपीरियंस कर चुका है मेरे लाइफ में, इवन वेदर इट इज ऑन माय सोशल फैमिली फ्रंट और ऑन माय प्रोफेशन. सो मेरा ये कहना है कि, और इसलिए देर मे बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक कनेक्टिविटी व्हाट आई कैन सी, कि भाई मुझे ये इनवाइट किया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, तो ये मैंने महसूस किया है कि हाँ, ये जो साइलेंस है, जब आपको कोई सडनली आपकी जो सोच है उसके हिसाब से अगर कुछ होता नहीं है लाइफ में, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. एंड सपोज आपको सक्सेस भी ज़्यादा मिलती है, तो इट विल बेसिकली फीड योर ईगो एंड ऑल दीज थिंग्स. सो उसके अंदर कैसे साइलेंस जो है वो आपको आप उसको कैसे बेसिकली एनकेश कर पाते हो या यूटिलाइज कर पाते हो, तो वो जरूरी है बेसिकली. दैट इज व्हाट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग.
थैंक यू भाई साहब, आपने साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा जो तालमेल है वो स्पष्ट किया, और साथ में हमको ये भी बताया कि हम पहले समझते थे दोनों में बहुत अंतर है, पर अब देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में अपनी बहुत बड़ी साइंस है. स्पिरिचुअलिटी स्वयं को जानने की, स्वयं को ठीक से चलाने की, अपने जीवन को अपने कंट्रोल में चलाने की और खुशी से जीने की एक कला है, एक साइंस है. तो इसी को अगर हम आगे देखें, तो कई दफा हम अपने आप में तो परिवर्तन ला रहे हैं, साइलेंस का उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन सबके प्रति हमारी शुभ भावना भी है. लेकिन मेरा श्याम भाई जी से ये प्रश्न रहेगा कि कई दफा हमारा मन भी ठीक है, वाणी भी ठीक है, लेकिन सामने वाले परिवर्तित नहीं होते. कई दफा हम देखते हैं कि वो वाइब्रेशंस हम तो दे रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं चलता सामने वाला ले भी रहा है या नहीं ले रहा, परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा. तो क्या वास्तव में ये बात सच है? आप अपने अनुभव यदि इसके डायरेक्शन में हो तो हमसे शेयर करें कि साइलेंस की शक्ति क्या परिवर्तन ला सकती है, या परिवर्तन किस प्रकार से होता है?
ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं आज आभार प्रकट करता हूँ हमारे यूथ विंग का कि मुझे भी यहाँ पर मौका अपनी बात रखने का दिया, और वो भी चंद्रिका दीदी के बराबर में। अब आधा तो मैं वैसे ही हो गया कि मैं कोई बात रखूं और दीदी उस पर पूरा वो रखेंगी, तो एक तो ये खुशी की बात भी है मेरे लिए कि मेरा सौभाग्य है दीदी के बराबर बैठने के और इनसे अपनी बात रखने का, और एक छोटा सा डर भी है कि कहीं कुछ मन से गलत नहीं निकल जाए तो मेरी बात को अन्यथा ना लें। और मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ अभी, मेरे को बताते हैं कार्यक्रमों में जाता हूँ कि अभी 1.5 साल का बच्चा है, अभी 1.5 साल से यज्ञ से जुड़ा हूँ, तो इस बच्चे को माफ करें ज़्यादा कोई ऐसी बात हो जाए तो। अभी बात कर रहे थे परिवर्तन की। देखिए मैंने यहाँ जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर जो सबसे पहला जो समझी बात मैंने वो ये था कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज एक गांव की जिम्मेदारी मिली है, मुश्किल से 7,000 लोग की आबादी है, और जिम्मेदारी भी मिली कि हमने बिना सरपंच रहते हुए कुछ परिवर्तन किए गांव में। उसमें अध्यात्म का भी सहारा लिया, और पिछले 1.5-2 सालों से, मतलब इससे पूर्व की अगर मैं बात करूं तो परिवर्तन आ रहा था, लेकिन सिर्फ भौतिक परिवर्तन आ रहा था। काम हो रहे थे, कई अचीवमेंट्स मिल रहे थे, लेकिन वो एक जो सीमा होती है, एक जो पराकाष्ठा होती है किसी भी कार्य की, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। 1.5 साल से यहाँ जुड़ा और एक जो ज्ञान मिला कि कैसे हमें परिवर्तन करना है और जो आवश्यक परिवर्तन क्या है, सिर्फ भौतिकता ही परिवर्तन नहीं है। तो जब हम परिवर्तन के लिए गए तो हमने सबसे पहले सहारा लिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हमने आध्यात्म का सहारा कैसे लिया कि अभी दीदी ने बताया कि स्वच्छता में हमने काम किया, आज राजस्थान की फर्स्ट ODF प्लस पंचायत हम बने, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, और उसमें हमने आध्यात्म के माध्यम से किया। वो ऐसे किया कि हमने सब लोगों से पूछा कि हम सफाई क्यों करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि हम दीपावली आती है, हम हर व्यक्ति या पूरे भारतवर्ष में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, और दीपावली पर हम साफ सफाई करते हैं, क्यों करते हैं, कोई बताएं? दीपावली पे ही सफाई क्यों की जाती है हर घर में जी? हाँ, दीपावली पर शायद इसलिए की जाती है कि शायद लक्ष्मी जी आएंगे, है ना? तो हमारे गांव में भी जब दीपावली आई तो हमने प्रयास किया कि चलो, उनसे हमने कहा कि चलो लक्ष्मी जी तो आएंगे घर पे आपके आ जाएंगे, लेकिन आएंगे किस रास्ते से? रास्ता तो हमारे गांव का ही है, जो हमारा जो हाईवे से 6 किलोमीटर गांव अंदर है, तो मैंने कहा वो हाईवे से चली जाएंगी लक्ष्मी जी। तो हमने प्रयास किया कि उन रास्तों को भी साफ करें, हमारे गांवों को भी साफ करें, तो आध्यात्म का सहारा लिया। अब बात करते हैं साइलेंस की, क्योंकि हम कई बार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या आज पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के नाते हमारे कई लोग ऐसे हैं जो हमारे विचारों में नहीं आते। अगर हम बात करें कि जैसे हम एक चुनाव लड़कर यहां तक पहुंचे हैं, तो सामने भी जो व्यक्ति रहते हैं वो चैन से नहीं रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जीता है तो जो हारने वाला है वो शांत नहीं बैठेगा, वो उस व्यक्ति में कमियां ढूंढता है, कई कार्यों को करने के लिए रोकता भी है। जैसे हम कुछ भी अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो एक बार तो वो साबित करेंगे कि ये जिसको आपने जिता है ये गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी लाइन नहीं बढ़ाता, वो दूसरे व्यक्ति की लाइन छोटी करने में लगता है। वहां पर साइलेंस का महत्व मुझे लगा। अगर हम उनका जवाब देंगे, आप सोचिए किसी भी क्रिया की हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारी कितनी एनर्जी उसमें लगती है, लेकिन वहीं पर हम उस जो हमारी प्रतिक्रिया के अलावा हम अपने मार्ग में ध्यान दें, अपने उद्देश्यों में ध्यान दें, अपनी आकांक्षाओं पर ध्यान दें, या जिस वजह से हमें चुना गया है हम उसमें ध्यान दें, तो शायद हमारे सफलता की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो वहां पर साइलेंस का महत्व है। कई बार कोई भी व्यक्ति अपने में कमी ढूंढता है या कमियां बताने में लगता है तो हम उससे जिदगने लग जाते हैं कि नहीं, मैं सही हूं, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पर हमारी साइलेंस काम आती है, वहीं हमें सीखने को मिलता है। पहले के व्यक्तियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सब चीजें हुई है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उल्टा जवाब ना दें। और साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप होना नहीं। मैंने जो यहाँ आके सीखा, मैंने देखा कि अपने अंदर ही अंदर जो हमारा जो मन रूपी जो समुद्र है उसमें कई गोते लगा रही है, कई विचार गोते लगाते हैं। उनमें कौन से विचार है जो हमारे उपयोगी विचार है, या कैसे हम उन विचारों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यदि वो सही है तो वहां पर मौन काम आता है। मौन का मतलब ही यही है कि हम अकेलेपन से एकांत की ओर कैसे जाएं और जाने कैसे, क्योंकि मंथन के बिना कभी भी हम सिर्फ दूध का उपयोग नहीं कर सकते, हमें दही या घी बनाना है तो उसका मंथन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से विचारों का भी मंथन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए मंथन की आवश्यकता रहती है, तब जाके परिवर्तन आएगा, भले ही वो एक गांव का परिवर्तन हो या पूरे देश में परिवर्तन लाना हो। तो परिवर्तन साइलेंस के साथ ज्यादा उपयोगी होता है और सफलता की गुंजाइश ज्यादा होती है, मेरा मानना है।
बहुत सुंदर भाई साहब ने बताया कि परिवर्तन साइलेंस में ही हो सकता है, उसमें सफलता हमको ज्यादा मिलती है। और वास्तव में देखा जाए जब हमारा मन शांत है, स्थिर है, तभी वो आसपास की परिस्थितियों को सोचने की और सॉल्यूशंस को देखने की काबिलियत रखता है। हमने आज सेशन किया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, आप सब ने ही चैलेंजेस भी प्रकट किए और आप लोगों ने ही उसके सॉल्यूशंस दिए, लेकिन शायद वो सॉल्यूशन हमें अपने कार्य क्षेत्र में नजर नहीं आते, यहां पर हॉल में बैठे वर्कशॉप में क्यों नजर आए? क्योंकि वो हमारा मन था जो उस समय शांत था, जो देख सका कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं। तो ये मन जो है जब एकांत में बैठता है, जब साइलेंस में होता है, तो भरपूर है। भरपूरता ही शक्ति की निशानी होती है। जिसके पास जो चीज ज्यादा है वो उस चीज में पावरफुल कहा जाता है। किसी के पास पैसा बहुत भी क्या बन जाता है, एक पावर बन जाता है। आजकल कहते हैं ना, उसके पास पैसे की बहुत पावर है। तो एक चीज यहां पर पूछना चाहेंगे दीदी, आप अगर उस पर प्रकाश डालें, कि जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है वो उस चीज का दान करने के सक्षम होता है। किसी के पास धन ज्यादा है वो धन का दान करेगा, किसी के पास अनाज ज्यादा है वो अनाज का दान करेगा। यदि हमने अपने अंदर साइलेंस की शक्ति भरपूर की, तो क्या ये ऐसी शक्ति है जिसका दान किया जा सकता है? और ये दान मैं किसको करूं? क्या मैं, जैसे आजकल हम कहते हैं, कहना तो बहुत आसान है, आजकल दुनिया में चारों तरफ क्या है, क्या है चारों तरफ? अशांति है। और क्या है? हाहाकार है, दुख है। तो चारों तरफ है तो सही, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अगर गंदगी है तो साफ कौन करेगा? अगर हमारे आसपास गंदगी है तो साफ भी हमें करना है। अगर हमारे आसपास अशांति है, हमारे आसपास दुख है, तो उसको दूर करने का कार्यभार भी जरूर हमारे ऊपर ही है। तो दीदी, क्या हम इस मनसा शक्ति का, जो शांति की शक्ति हम अपने अंदर भरते हैं, उसको दान भी कर सकते हैं? और इस दान के पात्र कौन कौन है? क्या सिर्फ मनुष्यों को हमें दान करना है? क्योंकि आसपास प्रकृति है, प्रकृति को भी क्या ये दान किया जा सकता है? और किस रूप से दान किया जा सकता है? दीदी मनसा दान पे कुछ बताएं।
ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ही दाता है और वो ही सबको देता है, परंतु अगर हम अपने आप को ईश्वर की संतान समझे, परमात्मा की संतान समझे, तो परमात्मा की संतान होने के नाते जैसे परमात्मा है वैसे हम स्वयं हैं, आत्मा हैं। ये पहले तो अपने में एक निश्चय करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा में जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो सब मुझ आत्मा में हैं। जैसे शरीर का हमें स्वाभाविक ज्ञान है कि मेरे पास आँख है, कान है, मुख है, पांव है, हाथ है, कोई क्वेश्चन नहीं है शरीर के बारे में। ठीक उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, ये सब भरपूर मात्रा में हैं। तो पहले अपने को महसूस करना पड़े कि मैं सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न हूँ, भरपूर हूँ।
दूसरा जो भरपूर होगा उसकी निशानी वो होगी कि उसे कभी किसी से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उसे कुछ भी किसी से नहीं चाहिए, ऐसी उनकी आंतरिक स्थिति होगी। कोई मान, कोई इज्जत, कोई धन, कोई दौलत, कोई पद, कोई पोजीशन, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी मानसिकता वाली आत्माएं दान कर सकती है। वो क्या दान कर सकती है? जिस व्यक्ति को जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का दान कर सकती है, अपने शुभ संकल्पों के माध्यम से, और सामने वाली आत्माओं के भाग्य को खोल सकती है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं कि हमारी शुभ भावना कैसे दूसरों के भाग्य को बदल सकता है। आज से करीब 35 साल पहले की बात है, एक 18 साल का युवान हमारे केंद्र में आया। मैं बाहर झूले पर बैठी थी, उसने एंट्री की, मैंने देखा ये बहुत प्रभावशाली बच्चा है। वो आया, वो परमात्मा के कमरे में गया, बाहर आया, मैंने उसको देखा, उनका परिचय पूछा, और फिर मैंने कहा कि तुम बहुत लकी हो और तुम्हारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ नजर आता है, तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। स्वाभाविक निकल गया, वो मिला चला गया। फिर वो दूसरे दिन आया और उसने खास मुझे बुलाया, बोला आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मैं बहुत महान बनने वाला हूं? मैंने कहा हाँ। बोला मैं तो कल इसीलिए आया था भगवान के पास ये कहने के लिए कि अभी मैं आज जिंदगी की एंड करने वाला हूं, सुसाइड करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे विदेश जाना है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरी जिंदगी का क्या मतलब रहेगा? तो मैंने सोचा था कि मैं लटक करके खत्म हो जाऊंगा, पर आपने जब ये बोला तो अब मेरे अंदर एक उम्मीद आई है। मैंने कहा बैठो, और मैंने उसको समझाया, मैंने केवल 7 दिन के लिए 1-1 घंटा यहां आओ और तुम एक डायरी में लिखो कि मेरे माताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे दादा बहुत अच्छे हैं, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, और वो मुझे विदेश जाने में अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तुम लिखो, और मुझे विदेश जाने की छुट्टी मिल गई है। मैंने लिखा है, मैंने कहा ये तुम दिन में जब भी फ्री हो जाओ लिखो। उसने लिखना शुरू किया और 7 दिन का कोर्स भी किया, और 7वें दिन वो इतना खुश होकर के आया, बोला बहन दीदी मेरे को विदेश जाने की परमिशन मिल गई। शुभ भावना क्या काम करती है? हमारा दिल शुद्ध है, दूसरों के प्रति शुभ भावना है, दया भाव है, प्रेम भाव है, और कोई अपेक्षा नहीं, तो हम शांति का दान, शुभ विचारों का दान, जीवन परिवर्तन का संकल्प दे सकते हैं, और वो दूसरों के जीवन में आत्मसात हो सकता है। ओम शांति। वो अभी बेंगलोर में है, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पर है।
कितना सुंदर दीदी ने अनुभव बताया कि कई बार हम नहीं इस चीज को जान पाते कि हमारा एक छोटा सा संकल्प, हमारी छोटी छोटी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि वो उनका जीवन परिवर्तन कर सकती हैं। तो इस महत्व को जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे तब तक दूसरों को कैसे हम सहयोग देंगे? तो हमको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि परमात्मा ने सच में हमें वो शक्ति दी है। हम जैमिन भाई जी से पूछना चाहेंगे कि भाई साहब आप ऑफिस की फील्ड में हैं, कार्य क्षेत्र में रहते हैं और कार्य भी आपका ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता रहती है, साइंस का काम है, इनोवेशन का काम है, जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत बड़े रिजल्ट्स में चूक हो सकती है, तो क्या ये साइलेंस को आप कार्य क्षेत्र में भी यूज करते हैं? कुछ आपके अनुभव हैं तो ये आज के हमारे युवाओं को बड़े उपयोगी होंगे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ जो यूथ बैठे हैं ये वर्किंग है, जो कहते हैं, मेरे ख्याल में आज तो नहीं कहते होंगे लेकिन जब आए होंगे यहाँ तो जरूर कहते होंगे, ये साइलेंस वगैरह ऑफिस में काम नहीं आता है, तो भाई साहब आपके क्या अनुभव हैं?
देखिए जब आप छोटे बच्चे होते हैं बराबर, तो आपके लिए नेचर बेसिकली ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा ये होता है मूवी टाइप, कि भाई क्यूरियोसिटी एक फैक्टर रहता है अप टू एज ऑफ लाइक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड उसके बाद मतलब ये चलता ही रहता है अप टू टिल यू अचीव सम गोल इन योर लाइफ लाइक बिकमिंग इंजीनियर, डॉक्टर, कॉमर्स ग्रेजुएट और एनी काइंड ऑफ फील्ड ऑफ योर चॉइस। ओके सो ये तो जो शुरू का जो आपका जो एक रहता है अप टू एज ऑफ लाइक 20, 21, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, जो हमें जिस ढांचे में जो डाला गया है हमारे उसके अंदर, तो उसकी मैं बात करता हूँ। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि कुछ अपने जो प्रीवियस बर्थ थियरी, हालांकि ये भी मैंने कुछ कहा सुना, मतलब किसी ने कहा सुना है उसमें से ही मैं बोल रहा हूँ, तो दे विल बी कंटिन्यूइंग इन दैट रिस्पेक्टिव डोमेन लाइक स्पिरिचुअल, और जैसे हमारे शंकराचार्य साहब या फॉर दैट लाइक अवर ब्रह्मा कुमारीज में जो है दादा ब्रह्मा बाबा, तो दे विल कंटिन्यू विद दोस काइंड ऑफ मिशन अहेड। तो जैसे अगर जॉब मिल जाता है किसी को, तो शुरू में क्या है कि उसको वो अपना जो भी उसने जो भी नॉलेज पाया होगा जो भी रिलेवेंट फील्ड में, तो उसके अंदर और वो डीप में जाने के लिए या कैसे अप्लाई करना है उसमें ही उसका शुरुआत के जो बरसों होते हैं 5, 10, 15 या 20 साल, तो उसमें वो अप्लाई करना ज़्यादा वो मतलब एक रहता है, उसके मैंडेट भी रहता है उसके लिए और वो जरूरी है उस टाइम। तो जो लोग उसमें जितना फास्ट वो अपना जो भी कुछ पढ़ा है उस एज तक का उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो वो जल्दी एक पादान के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी करके ऊपर चढ़ते मतलब चलते ही रहते हैं। तो मान लो कि आप 5, 10, 15 साल बाद मैनेजर, डायरेक्टर या कोई एक अच्छी पोजीशन पर चले गए हो, और इन सम केसेस सपोज यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको आपका जो आपने लाइफ के अंदर जो भी एक गोल सेट किया है जो आपको पसंदीदा है, तो उसके लिए आपके आजू बाजू जो नेचर है उसमें कौन कौन लोग जो अवेलेबल है, मतलब मे बी लाइक इन द फॉर्म ऑफ सबोर्डिनेट्स या पूरी सिस्टम, तो आपको उनको एक न्याय देना ये जरूरी बन जाता है कि हाँ ये जो मैंने 5, 10, 15 साल में जो मैंने कुछ गेन किया, तो उसके लिए ऑटोमेटिक इसमें बेसिकली काफ़ी ये जो शुरू का माहौल रहता है उसके अंदर आपके पास यू विल कम अक्रॉस सो मेनी सक्सेस फेलियर्स इन योर लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग परटर्ब या क्या बोलते हैं उसको कि डिस्टर्ब होने के बजाय, अगर आप साइलेंस मोड में जाते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल एवरी डे आप उठ जाते हो पर्टिकुलरली वो फेज में, और आप जस्ट ऐसे ही आधे पौने घंटे भी ऐसे बैठे रहो, या रात को सोते वक्त अगर आप बैठे रहो शांति से, और आपकी जो भी एक्शंस रिएक्शंस उसका अगर आप वो भी वही रिकलेक्ट करना शुरू करो, सो आपके अंदर जैसे दीदी ने बताया कि बेसिकली योर बॉडी इज योर कैरियर, आप आत्मा जो होता है वो स्वतः शांत ही होता है एक्चुअली, तो वो ऑटोमेटिक जो जैसे वो अनियंस होती है और उसके जो लेयर्स जो आप निकालते हो निकालते जाते हो, तो उसी तरह वो भी अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है, एंड प्रोबेबली आपको फिर उसमें से ही कुछ ना कुछ मार्ग निकलता रहता है कि भाई अगर सक्सेस मिली है तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू बेसिकली ऑलमाइटी एनी सुपर पावर और योर सराउंडिंग बेसिकली, बिकॉज ऑफ देयर विश एंड विल ओनली यू कुड बी एबल टू रीच दोज पोजिशंस, एंड इफ यू आर यस डेफिनेटली इफ यू आर कमिंग अक्रॉस सम फेलियर्स और द सिचुएशंस जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो उसके अंदर आपको मुझे लगता है कि आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ओनली, सिचुएशन जो भी आई है सक्सेस फेलियर दैट इज वो आपके सराउंडिंग्स जो है नेचर ऑल माइटी या जो भी बोलो उसने आपके ऊपर थोप दिया है, सो सक्सेस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, यू विल बी हैप्पी एंड इट इज अ वेरी गुड विल प्रिवेलिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट इन फेलियर मोड्स आपके हिसाब से जो नहीं होता है तो उसको कैसे झेल पाना है या वो जो दौर कैसे निकल जाना है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द लेडर्स इफ यू टेक लाइक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरी गुड पीपल एट यंगर लेवल देन यू, कि भाई हाँ ये तो ये बंदा एक अच्छा है कि जो मेरा काम आगे ले जा सकता है, तो यू शुड बी एबल टू इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग आई मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मे बी सिंस वी आर कैरिंग अवर ह्यूमन बॉडी दिस फिजिकल मटीरियल वर्ल्ड, स्टार्ट गिविंग वॉट एवर इन द फॉर्म ऑफ लाइक मनी एप्रिशिएशन प्रमोशंस और ऑल दीज थिंग्स, सो ऑटोमेटिकली एक वो फेज आ जाता है दैट वी कॉल लाइक एज ऑफ 40-50 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट, एंड एज यू स्टिल ग्रो बिगर एंड बिगर लाइक बिटवीन 50-60 और मोर देन दैट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने काफी कुछ नॉलेज एक गैदर किया है, सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड टू द नेचर सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ योर द नेचर एंड सराउंडिंग्स यू रीच अप टू दैट लेवल, सो दैट इज द बेस्ट टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल R&D ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, कोई भी मतलब ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जाके भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि भाई हाँ ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी मेरा ये इस टाइप का एक्सपीरियंस रहा, और आपको एक चीज मैं बताऊं, जैसे कोई भी जो आत्मन होता है उसकी टेंडेंसी इज बेसिकली स्टेबिलिटी की ओर ही होती है टॉवर्ड्स आई मीन एनी मॉलिक्यूल्स टेंडेंसी इज टॉवर्ड्स इक्विलिब्रियम और स्टेडी पोजिशन, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपना जो भी आपने जो भी कुछ पाया है इन वॉट एवर वे लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल मटीरियल लेवल दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यू कैन से टू गिव बैक टू द नेचर, नाउ नेचर में सब आ जाता है बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द आत्मन विच इज सीन एवरीवेयर, वॉट एवर आई हैव लर्नड और रेड फ्रॉम दैट इट इज बेसिकली कन्वर्जेंस टू ओनली वन एंटिटी ओनली, सो दैट इज द best thing, and I can tell you, scientist, no, without having any, you can say, a feeling kind of things for all surroundings, like whoever their colleagues or subordinates, उनके प्रति अगर संवेदना नहीं होगी तो वो इतनी अच्छी ये जो हमारी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज या जो भी हुई है वो नहीं हो पाती. और इस सब में ये जरूरी है कि आप जितना ज़्यादा, जैसे हमारे भगवान बुद्ध है, इवन जो आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखो, तो जहाँ तक मुझे पता है कि नारायण मूर्ति है, इवन मीडिया में जो जो ओपेर, उसका नाम क्या है, एमी वॉटसन एंड ऑल दिस थिंग्स, सो दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एक्सटेंसिवली ऑन साइलेंस एंड बेसिकली इट इज बेसिकली गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग. बेसिकली यू ओनली हैव टू चेंज सिंस यू आर कैरिंग दिस इन दिस बर्थ.
बहुत सुंदर भाई साहब आपने कहा, संवेदना के बिना कोई आविष्कार नहीं होता. बहुत सुंदर. हम एक आखिरी प्रश्न श्याम भाई जी से पूछेंगे कि भाई साहब, जैसे भाई साहब ने भी बताया, हमारे जयमिन भाई जी ने बताया कि कई बार फेलियर्स भी आते हैं, पर उनको भी हमें पार करना होता है, तो उस समय पर शांति की शक्ति आवश्यक होती है. तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय भी हमें इशारा दे रहा है, तो संक्षेप में आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने जब इतने सारे परिवर्तन लाने के प्रयास किए तो आपके सामने भी कई बार ऑपोजिशन आया होगा, तो उस समय आपके मन की स्थिति क्या रही और साइलेंस ने आपको कैसे हेल्प किया?
जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि साइलेंस का जो पावर, जिसको हम पावर कहते हैं, वो बहुत उपयोगी तो है ही. और जैसे कि हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं, क्योंकि मैं 10वीं तक स्कूल जा पाया तो ज़्यादा कुछ ज्ञान था नहीं, लेकिन हमने देखा कि कैसे हम लोगों की भावनाओं के साथ अगर कोई काम करें तो उसका प्रतिफल थोड़ा विशेष रहता है. जैसे कई बार हम कोई भी फील्ड में काम करते हैं तो मैं बन के करते हैं, लेकिन हम कैसे हम बनकर अगर यदि काम करते हैं तो उस काम को, उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है और वो काम एक सफल कार्य के रूप में परिवर्तित भी हो जाता है. तो सदैव किसी भी व्यक्ति की वैल्यू समझनी चाहिए. आज हम जितने भी अगर पुराने लीडर्स की बात करते हैं, उन हर लीडर्स ने सेनाएं नहीं बनाई, उन्होंने सेनापति बनाए. कई बार हम भीड़ इकट्ठा करने लग जाते हैं और वो, लेकिन उनको कहते हैं ना कि अपने मनोविज्ञान से कोई भी ये काम करें, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सिर्फ सेना बनाई है और सिर्फ उनको ऑर्डर देते हैं. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे नीचे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने निर्णय स्वयं ले सके. उनका पावर इतना, वो इतने, उनका खुद का भी दिमाग इतना तो कम से कम चले कि वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें पैदा कर सकें, और वो योग के माध्यम से ही होता है. आज ग्राम पंचायत हमारा जो परिसर है उसमें सुबह क्लास चलती है, गीता पाठशालाएं वहां चल रही है. आज इतने लीडर्स गांव में हो गए, आज 9 SDGs पर हम काम कर रहे हैं और हर SDGs पर एक अलग व्यक्ति एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और वो योग के माध्यम से कर पा रहा है, वो साइलेंस के माध्यम से कर पा रहा है. उसको नहीं है चिंता कि मैं कोई शोर करूंगा, मैं अपना काम कहां करूं, लेकिन वो जो साइलेंस है वो एक शोर बनकर दिख रहा है. आज पूरे राष्ट्र में एक गांव का नाम हो रहा है, उनके लोगों का नाम हो रहा है, और एकमात्र पंचायत है जहां के सरपंच के साथ साथ उसके गांव वालों का अवार्ड मिलता है. हरित जाहोता अभियान जो ग्रीनरी के लिए काम कर रहा है हमारे राजू जी, उनको काम वो मिल रहा है. कोई जहां पर कोई एक रजनी देवी या पिंकी एक अपने महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसको अवार्ड मिल रहे हैं. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबसे पहले, क्योंकि देखिए मैंने जीवन में एक बात सीखी है कि सफलता मिलना इतना मुश्किल नहीं है. एक बार सफल आदमी कोई भी व्यक्ति हो जाता है, लेकिन उस सफलता में रहकर अगर सस्टेनेबल कोई रहता है तो वो योग के और साइलेंस के माध्यम से ही रह सकता है. उस जगह पर बने रहने के लिए साइलेंस की बहुत आवश्यकता है, ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है. थैंक यू.
बहुत सुंदर. ऊंचे स्तर पर पहुंचना मुश्किल नहीं, लेकिन वहां रहने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए. एक लास्ट मिनट में दीदी से हम पूछना चाहेंगे कि दीदी, कई दफा युवा कहते हैं कि हमने उनको बहुत शांति देने का प्रयास कर लिया, हम खाली हो गए पर वो परिवर्तित नहीं हुए. तो जैसे आजकल मोबाइल भी हम देखते हैं, अगर लो बैटरी दिखाता है तो हम कहीं ना कहीं पावर प्लग में जाके उसको कनेक्ट करके चार्ज कर लेते हैं. तो यहां से जा रहे हैं तो सब भरपूर होके जा रहे हैं. हाथ खड़ा करेंगे जो भरपूर होके जा रहे हैं। अब यहां से तो भरपूर होके गए, वहां जाके बैटरी कम हो गई, तो हम अपने को चार्ज कैसे करें? वो शांति का सोर्स क्या वो कहीं भी कभी भी उपलब्ध है? जैसे आजकल हम कहते हैं मोबाइल को चार्ज करना है तो पावर बैंक साथ में रखते हैं ताकि हम हमारा मोबाइल डिस्चार्ज ना हो, हम मोबाइल का इतना ध्यान रखते हैं। तो इस मन को शांति से कभी भी कहीं भी कैसे चार्ज करें? दीदी उसके कुछ छोटे टिप्स बताएं।
ओम शांति। चार कॉन्शियस हैं, एक है बॉडी कॉन्शियस, स्वयं को देह समझना। अगर स्वयं को देह समझेंगे तो हरी वरी टेंशन डिप्रेशन इसके आप शिकार रहेंगे। दूसरा है एक्शन कॉन्शियस, मेरे सिर पर बहुत जिम्मेवारी है, मुझे बहुत कुछ काम करना पड़ रहा है, लोगों का साथ भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं ये क्या है, एक्शन कॉन्शियस। परंतु इन दोनों से ऊपर है सोल कॉन्शियस। अगर आप अपने को एक श्रेष्ठ आत्मा समझते हो कि मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा ये शरीर कर्मेंद्रियों की मालिक हूं और मैं आत्मा कार्य की क्रिएटर हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, कौन? मैं आत्मा क्रिएटर हूं। तो मैं आत्मा क्रिएटर हूं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही हूं और मैं आत्मा परफेक्ट आत्मा हूं, इस आत्मा में कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर मैं अपने को आत्मा समझूं तो आत्मा परफेक्ट है, उसमें सब कुछ है, ज्ञान प्रेम आनंद खुशी शांति शक्ति सब कुछ है। मैं अपने को सोल महसूस करूं और मैं गॉड की संतान हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। तो चौथा है गॉड कॉन्शियस। अगर हम परमात्मा अभिमानी बन सकते हैं, हम जनरेटर के साथ जुड़े रहते हैं, मैं गॉड कॉन्शियस हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा के द्वारा मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो कंटिन्यूअसली आप चार्ज रहते हैं, नॉट ओनली इन द डे टाइम, जब आप सो भी रहे हैं तब भी आप चार्ज रहते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपने अच्छी तरह से डाल दिया है कि मैं एक चेतना हूं, मैं एक दिव्य चेतना हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं और इस सृष्टि पर अभी केवल मैं परमात्मा का कार्य करने लिए हूं और मेरा कार्य देने का है, देने का है, देने का है। और जब आप देते हो तो वो और बढ़ता जाता है, क्योंकि आपने जो दिया वो दूसरों को मिला, वो औरों को मिल रहा है, तो वो पावर स्प्रेड हो रही है। इसलिए कंटिन्यूअस रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज एंड गॉड कॉन्शियस स्टेज, इट्स द इजीएस्ट वे टू बी पीसफुल। मैं हूं ही पीसफुल आत्मा। तो पॉसिबल है ना, आप सभी पीस मैसेंजर बन के जाएंगे। हम कौन है? पीस मैसेंजर। हम यहां से पीस मैसेंजर का टाइटल लेके जा सकते हैं? हमें ही लेना है, खुद ही लेना है। जो कहते हैं हम पीस मैसेंजर का टाइटल लेके जा रहे हैं वो हाथ उठाएं प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए बहुत ताली बजाएं। आप महसूस करेंगे कि आपके नैनों से शांति बह रही है, आपके मुस्कुराते हुए होठों से शांति बह रही है, आपके रोम रोम से शांति की वाइब्रेशंस बह रहे, आप खुद महसूस करेंगे कि मैं शांति का एंजल हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का देवता हूँ। तो और वो आपके द्वारा दूसरों को भी वो फील होता रहेगा। बस हमें सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस रहना है, ये दो कॉन्शियस को अब भूल जाना है। भगवान सब कुछ कराएगा, एक्शन कॉन्शियस नहीं बनो, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनो। कितनी बीमारी भी आ जाए ने तो भी अगर आप सोल कॉन्शियस होंगे ने तो बीमारी आपको असर नहीं करेगी, आपकी शांति आपको क्योर कर देंगी। मेरे पास इतने ज्यादा अनुभव है लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा टाइटल आपको कहीं संसार में मिला होगा जो आज दीदी ने आप सबको दिया कि हम सभी कौन है। जोर से कहेंगे कौन है? पीस मैसेंजर्स। हमारे नैन, हमारा मुख उस पीस का संदेश दे, लोग पूछे आपको ये शांति कहाँ से मिली है। तो जोरदार तालियों से हम अपने
यहां से ट्राई करें, चलने की स्पीड स्लो कर दे, मतलब आत्मा समझ कर चले, आवाज कम कर दे, वो कॉन्शियस के साथ बात करे, मैं आत्मा बात कर रही, मैं आत्मा देख रही हूं। अपने आप वो चेंज आप खुद महसूस करेंगे, एनर्जी सेव हो रही है, कम एनर्जी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के पैनलिस्ट का जो उन्होंने इतने अच्छे सुंदर विचार हमारे सामने रखे। अब अगले सेशन की ओर बढ़ने से पहले हम पहले जोरदार तालियों से अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करेंगे, उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और फिर हम अभी इस सेशन को पूरा करेंगे। हमारा अगला सेशन उसके लिए हम सभी तैयार हो जाएंगे। ओम शांति।